हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 16 अक्टूबर के शाम को हम जगन्नाथ जी के सामने छत पर बैठे हैं। इस तरफ चैतन्य मठ है, ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी का जन्म स्थान, सुबह गए थे। इस तरफ नीलाचल पे जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। हरे कृष्णा। तो एक रिक्वेस्ट है लोगों की कि एक कहानी हमने बताई नहीं है जगन्नाथ जी के बारे में, वो ये है कि हरे कृष्णा, थैंक यू सर, जय श्री राधे। जगन्नाथ जी का हनुमान जी का भी संबंध है, हाँ, बहुत सुंदर संबंध है। इसकी कथा ऐसी है कि हनुमान जी को ये वरदान भगवान ने दिया था, जब ही राम भगवान अपनी लीला को समाप्त करते हुए अपने धाम में लौटते हैं तो सभी अयोध्या वासियों को एक विमान पर लेते हैं। अभी उस जमाने के विमान जो है वो शहर या देश जैसे हुआ करते थे, तो पूरी अयोध्या नगर के पूरे वासियों को वो अपने विमान पर लेते हैं। और जो भगवत धाम में अयोध्या धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो अयोध्या है, उसमें सबको लेके जाते हैं। केवल दो व्यक्तियों को पीछे छोड़ते हैं, एक व्यक्ति है हनुमान जी और दूसरे हैं काकभूषुंडी। काकभूषुंडी मतलब जो कौवा, जो भगवान का भक्त है। ये काकभूषुंडी भी अभी जीवित हैं और हनुमान जी और काकभूषुंडी को भगवान ने ऐसा आदेश दिया था कि जब तक रामलीला मतलब मेरी लीलाओं का वर्णन चलता रहेगा तब तक आप दोनों इस दुनिया में रहोगे। इसलिए हनुमान जी आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और काकभूषुंडी भी वैसे ही हैं। बीच में मैंने एक बार पढ़ा था कि जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी से मिलकर 71 युगों के बाद में आते हैं, एक मनवंतर 71 युग का होता है, उसके बाद में लौटते हैं, तो जो उस समय का राजा होता है वो राजा इंद्रद्युम्न को प्रश्न करता है कि आप कौन हो। तो उस समय नारद मुनि वहाँ होते ही है, लेकिन मैंने सुना है कि पेड़ पर बैठे हुए काकभूषुंडी जो है वो पूरा कथा वृत्तांत तो उनको बताते हैं, और बताते हैं राजा को कि आप उनके ही वंशज हों। लेकिन हजारों युग बीत चुके हैं, हजारों साल बीत चुके हैं, लाखों साल, 71 युग, तो ये काकभूषुंडी हैं। इनका कई पुराणों में, कई कथा में वर्णन आता है। तो हनुमान जी भी इसी तरह से जब तक रामलीला चलती रहेगी तब तक हनुमान जी रहेंगे। तो हनुमान जी जो इतने बलशाली थे कि समुद्र देवता जो थे, वरुण देवता, उनसे डरते थे उनके बल के वजह से। वैसे हनुमान जी बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी गणना तो हम देवताओं में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं से भी कई ऊपर हैं वो। ही इज मच मच अबव ऑल द डेमिगॉड्स आल्सो। तो समुद्र का यहाँ पर बहुत आतंक था। जगन्नाथपुरी में समुद्र अपनी सीमा लांघ कर इस शहर को पानी से भरता था हमेशा, तो इसलिए सभी हाहाकार होने के बाद में जनता यहाँ की भगवान से प्रार्थना करती है, जगन्नाथ जी से। तो जगन्नाथ जी हनुमान जी को बुलाते हैं। ये सब लीला है भगवान की, जरूरी नहीं कि समुद्र केवल हनुमान जी से डरते हैं और भगवान से डरते नहीं हैं। ये प्रश्न मन में उठता है ना कि भगवान वहाँ खड़े हैं तो भगवान को बिना डरे समुद्र आगे आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये भगवान अपने भक्तों की लीला करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। तो हनुमान जी को लाके खड़ा कर देते। अगर डिप्यूटी काम कर सकता है तो फिर बॉस को जरूरत क्या है काम करने की। तो फिर हनुमान जी को समुद्र के किनारे खड़े कर देते हैं, और हनुमान जी के भय से समुद्र अपनी जगह पर रहता है, आता ही नहीं है। तो हनुमान जी को भी काम क्या है, खाली खड़े रहना है, कुछ काम नहीं है। सेवक है ना, वो भगवान के सेवक हैं, वो सेवा के बिना रह सकते, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी और कुछ काम नहीं, खड़े रहना है बस। और क्या खाने को मिल रहा है, दाल और चावल। रोज उनको दाल चावल जा रहा है, पुआ जा रहा है। बहुत दिन खड़े रहते हैं बेचारे, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको सीता मैया की याद आती है। सीता मैया हमको इतने लड्डू वड्डू खिलाते थे, बढ़िया पंच पकवान, और हमेशा बहुत आनंद रहा करता था सीता जी की रसोई में। अभी बहुत दिन समुद्र तो आगे आया नहीं है, चलो एक बार एक छलांग मार देते अयोध्या में, मैया के पास जाके बढ़िया लड्डू खा लेते। तो रात के समय पर जब सब शांत है, सब समुद्र भी शांत है, सब लोग शांत हैं, तो वो हवा में उड़ते नहीं, वो छलांग लगाते हैं, एक कुदी लगाते हैं तो अयोध्या में पहुंच जाते हैं। मैया बड़ी खुश होती है, सीता मैया, दंडवत प्रणाम करते, बेटा तुम आ गए हो, तो बहुत दिन के बाद आए हो, तो बड़े प्रेम से लड्डू बनाती है, पंच पकवान बनाती है, बहुत खुश कर देते हैं। हनुमान जी बड़े दिल से बहुत दिन के बाद में बहुत बढ़िया भोजन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो निकलते हैं, समुद्र ऐसे सामने आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम पूरे जगन्नाथपुरी को फ्लड कर देते हैं, बाढ़ आ जाती है यहाँ पर। और सब लोग पूछे हनुमान जी कहाँ, हनुमान जी कहाँ, हनुमान जी कहाँ, अरे हनुमान जी तो वहाँ नहीं है, हनुमान जी गायब हो गए। बहुत देर यहाँ पर हाहाकार मचता है, हलचल मचती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं कहाँ पर है हनुमान जी। उतने में लड्डू वड्डू खा के पेट भर के हनुमान जी छलान लगा के दोबारा आ जाते हैं, तुरंत तुरंत समुद्र पीछे भाग जाता है। तो सब लोग आके हनुमान जी को पूछते हैं, ये कैसे आप ऐसे करते हो, आपको यहाँ पर खड़ा किया था, आप जब चले जाते हो ऐसे कैसे होगा, हम तो बिल्कुल मृत्यु के समीप आ गए थे, इसलिए अभी हम आपको जाने नहीं देंगे। समुद्र किनारे पे हनुमान जी को श्रृंखला से मतलब सांकले से बांध देते हैं। अभी भी हनुमान जी खड़े, हमारा प्लान था कोणार्क से आते वक्त आने का, लेकिन वो जो बहुत 3 घंटे का लॉस हो गया टाइम का, इसलिए हम लोग उन्हें जा नहीं पाए, ऑन द वे था वो, वापसी ऑन द वे। तो उनको बेड़ी से बांध के रखा है समुद्र किनारे में, करीब करीब 15-16 फीट की ऊंची की मूर्ति है, बहुत भव्य ऐसे खड़ी है, और धोती पहनी हुई है ब्रह्मचारी की, आधी धोती तो दिखाई नहीं पड़ता है, धोती ऊपर करेंगे तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैर जो है वो बेड़ी से बांध के रखे हैं, इसलिए उनका नाम जो है बेड़ी हनुमान। हरे कृष्णा। महेश जी जरा मेरे कैमरे से सूर्यास्त का फोटो लीजिए, सब लोग दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा, विवस्वान भगवान की जय हो। तो सुबह हमने कहा था आपको कि हम नमक कलेवरम के बारे में आपको बताएंगे। जगन्नाथ जी ऐसे अनोखे भगवान हैं जो कुछ कुछ समय के पश्चात अपने शरीर को बदली कर देते हैं, उसको कहते हैं नव कलेवरम, नया शरीर। तो इसका कोई नियम ऐसा है उसका, कि जिस साल में, हमको पता है ना कि 4 साल में 2.5 साल में कभी कभी अधिक मास आता है ना, उसका भी गणित होता है, अधिक मास कभी 2.5 साल में आता है, कभी किस साल में आता है, लेकिन आता ज़रूर है। और चतुर्मास के जो 4 महीने हैं उसमें से एक एक महीना अधिक होता है, कभी आषाढ़ होता है, कभी श्रावण होता है, फिर भाद्रपद और कार्तिक, ऐसे पूर्णिमा से पूर्णिमा हम लोग गिनती करते हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा से नेक्स्ट महीने की पूर्णिमा, ऐसे 30-30 दिन का होता है, मतलब 1 से लेके 30 तक नहीं होता है, 15 से लेके 15 ऐसे होता है। आषाढ़ से लेके भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा, ऐसा होता है। तो जिस महीने, जिस साल में आषाढ़ महीना अधिक आता है, 2 आषाढ़ आते हैं उसमें, है ना, पहले अधिक आषाढ़ आता है, फिर जो नॉर्मल आषाढ़ है वो आता है। तो जिस साल, ऐसे अच्छी तरह लिखा हुआ है कि जिस साल 2 आषाढ़ की पूर्णिमा आती है, मतलब 2 आषाढ़ महीने आते हैं ना नेचुरली, उस साल नवकलेवरम का कार्यक्रम होता है। और 1 साल पहले से ही सभी जो पंचांग करने वाले ज्योतिषी है वो अपना गणित कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि किस समय चलना है उसके लिए। और ये पूरी प्रक्रिया को 3 महीने से अधिक टाइम लगता है। तो शुरुआत कैसे होती है इसकी, जिस साल पे तय है, जैसे कि अभी आपको सुनकर खुशी होगी कि पिछले सदी में 20th सेंचुरी में केवल 5 बार नवकलेवर हो गया है, और लास्ट जो है वो 1969 में हुआ था, और तुरंत 8 साल के बाद में हुआ था 1977 में, और फिर 22 साल के बाद में हुआ था, नहीं 19 साल के बाद में हुआ था 1996 में, अभी लास्ट जो है 96 में हुआ था, अभी 2015 में होने वाला है। हाँ, हमारे नरसिंह विद्यापति जी जो है उन्होंने बताया कि आप सबको आना है, तो हमने अपना बुकिंग ऑलरेडी कर लिया है 2015, और आप लोगों को निमंत्रण है, अभी आ सकते हैं, क्योंकि वो इतना बढ़िया महोत्सव होता है कि आमतौर पर रथ यात्रा के समय सबसे अधिक भीड़ विश्व में होती है। ऐसे कहा गया है कि एक दिन में, एक इवेंट पे बिना बुलाए एक जगह पर सबसे अधिक जनसंख्या इकट्ठा होती है जगन्नाथपुरी में, पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 लाख तक लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब नवकलेवरम उत्सव होता है तो उस रथ यात्रा को 25 लाख लोग आते हैं। तो आपको कहीं भी रहने की तैयारी होनी चाहिए, छत पे, रास्ते पे, फुटपाथ पे, सब जगह आपका बुकिंग होगा। बैठने के लिए भी छत पर चेयर लगाते हो, एक्चुअली स्पीकिंग रथ यात्रा में जाएंगे ना आप, हर एक के छत पे वो कुर्सी लगाते हैं, वो 200 रुपये 400 रुपये की कुर्सी होती है बैठने के लिए, भगवान का पहंडी विजय चेहरा पहारा उत्सव देखने के लिए ऐसा होता है, आपने देखा है ना, छत पे जाके बुकिंग करते हैं। आमतौर पे छत पे देखेंगे तो आप कभी सोच सकते नहीं कि हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन उस समय बैठते हैं उसमें। आई डी सपोज टू बी मोस्ट प्रेशियस सीट, इट्स नॉट समथिंग लाइक नो अरे ये डॉक्टर देखो छत पे बैठा है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर सिटिंग देयर यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन। हाँ हाँ, बालकनी स्पेशल। सो हर समय 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 का प्रभाव होता है। अभी जाके बैठेंगे लोग आपको हंसेंगे, कौन पागल आ गया बम्बई से छत पे बैठा है। लेकिन उस समय आपको देख के आपकी सराहना करेंगे, देखो कितना भाग्यवान व्यक्ति है, छत पे बैठा है सामने एकदम, जगन्नाथ जी जहाँ से आने वाले उसके सामने बैठा है। तो इस तरह से 3 महीने पहले प्रक्रिया शुरू होती है, और इसमें 3 लोगों का अधिकार होता है, 3 क्या कहते जातियों का। एक है विद्यापति जाति, जो विद्यापति जो थे उन्होंने ब्राह्मण के रूप में आए थे अवंत्य देश से, जिन्होंने नीलमधों का दर्शन किया था, उनके वंशज। एक विश्ववासु के वंशज, उनको दायित कहते हैं, दायितपति। और एक है विश्वकर्मा के वंशज, जिन्होंने वो मूर्ति बनवाई थी। ये 3 वंशज यहाँ पर हैं, और उनको अलग अलग सेवा बांटी गई है। खास करके रथ यात्रा की सेवा जो है वो दायितपति और सभी मिलकर करते हैं। ये वहाँ के गुंडीचा मंदिर की सेवा, रथ यात्रा रथ बनाने की सेवा, रथ यात्रा के समय की सेवा, जो भी नए नेत्रोत्सव है और पांडी विजय चेरा पहारा जितने भी उत्सव है सब वो करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो लोग हैं, इनमें से कुछ गिने चुने लोग चुने जाते हैं, और 3 महीने पहले ये सब प्रक्रिया आरंभ होती है। तो 65 दिन पहले ये मुहूर्त निकालते हैं, और उनमें से 28 लोग निकलते हैं, 10 इस जाति के, 16 उस जाति के, और बचे हुए जो भी हैं निकलते हैं और राजा के पास आते हैं। राजा उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, और उनको फिर एक वस्त्र पहनाते हैं सर पे, उससे वो सिंबॉलिक स्टार्ट। तो फिर वो जाकर जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर अपना तंबू लगाते हैं सब लोगों को, और वहाँ से कुछ दिन निवास करते हैं, और पूरी तैयारी कर जाने की तैयारी, औजार लेते हैं, सब कुछ सामान लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं वहाँ पर। जगन्नाथ मठ में उनका स्वागत सत्कार होता है, देखभाल होती है, क्योंकि बहुत हिस्टोरिक इवेंट है ना ये, तो जिसके जिसके पास में उसका अधिकार है उनको बहुत भाग्य की बात लगती है वो कि हमारे पास आए रहे। उसके बाद में यहाँ से 20 किलोमीटर एक मंदिर है, वो भी मैं मेरे ध्यान में नहीं आया जब यात्रा का प्लान कर रहा था अभी, वो अपने साक्षी गोपाल के रास्ते पर ही है वो, लेकिन वो ध्यान में नहीं आया हमारे कि भूल गए। तो मंगला देवी का मंदिर है, तो जो मंगला देवी का मंदिर है उसको जगन्नाथ भगवान अपनी माता मानते हैं। तो ये सब जो पुजारी हैं ये जाके अपने जगन्नाथ जी की माता के पास रहते हैं, और वहाँ पर कुछ 10 दिन का 7 दिन का 8 जैसे भी टाइम लगेगा वो सब मौका उनका होता है। और जगन्नाथ मंदिर की माता के मंदिर में इन सभी लोगों का बड़ा धूमधाम से स्वागत करते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं उनके लिए, गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, नृत्य करते हैं, पंच पकवान बनाते हैं उनके लिए, बहुत बढ़िया सत्कार करते हैं उनका, उनको भेंट वस्तु देते हैं। और फिर योग्य समय पर 3 लोग केवल उसमें से, एक विश्ववासु के इसमें से और एक दायित्वपति के ग्रुप से और एक व्यक्ति ऐसे मंगला देवी के गर्भगृह में सो जाते रात को। तो चीफ पुजारी जो है इसमें से 3 में से, इसमें के किसी की सपनों में दर्शन हो सकता है, ऐसे लोग वहाँ पर जो मुख्य सबसे सीनियर लोग हैं जाके रह जाते हैं। और 3 दिन सोते लगातार, हो सकता है उनको फर्स्ट डे सपना आ जाए, हो सकता है सेकंड डे सपना आ जाए, हो सकता है थर्ड डे सपना आ जाए, उसके पहले वो मंगला देवी की सब मिलकर, या आने वाले मेहमान लोग और वहाँ के लोग मिलकर फूलों से, फलों से, हारों से, श्रृंगार से बहुत बढ़िया उत्सव सेवा करते हैं उनकी, मंगला देवी को प्रसन्न करने के लिए, और उसके पश्चात ही जाके मंडप में सोते हैं। क्या तुम्हारा बैटरी का हमेशा क्या तकलीफ होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 3 दिनों में से किसी भी एक दिन चीफ पुजारी के सपने में मंगला देवी आती है और उनको बताती है कि जो वृक्ष आपके लिए ढूंढना है वो वृक्ष किस दिशा में है, उसका दर्शन देती है सपने में और गाइड करते कि ये वृक्ष इस एरिया में यहाँ यहाँ पर है। फिर ये लोग अगले दिन निकल जाते हैं वहाँ से, और कोई भी सफ़र जो है यहाँ से मंगला देवी का और मंगला देवी से जंगल में कहीं भी पैदल जाते हैं, कोई मोटराइज व्हीकल यूज़ नहीं करते हैं, सब लोग पैदल चलते हैं अपने औजार लेकर। और बहुत दिन तक यात्रा करते हैं और जिस दिशा में उनको बताया गया स्वप्न में, वो चीफ पुजारी उनको गाइड करते हैं और सब लोग जंगल में जाते हैं। अभी वो जो वृक्ष है उसके कुछ लक्षण होते हैं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उसको याद रखना मुश्किल है। एक बात निश्चित है कि वो वृक्ष जो है वो नीम के होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनको चार वृक्षों को ढूंढना है, एक जगन्नाथ जी, एक बलदेव जी, एक सुभद्रा जी और एक चक्र जी, हाँ सुदर्शन चक्र। तो जो जगन्नाथ जी के वृक्ष है उसका लक्षण ऐसा है कि उसका रंग जो है बहुत गहरा होना चाहिए, या तो लाल रंग मिक्स होना चाहिए उसके अंदर। फिर उसकी जो शाखा है, मेन शाखा, वो सीधी होनी चाहिए और 7 से 12 फीट जमीन से ऊंची होनी चाहिए, उसका मेन जो बुंदा होता है। फिर उस बुंदे को 4 शाखाएं निकलनी चाहिए उस बुंदे से। उसके बाद में उसके पास कहीं भी शमशान होना चाहिए, उस पेड़ के पास शिव का मंदिर उसके पास में होना चाहिए, साधु का घर उसके आसपास में होना चाहिए। उसके उस पेड़ के ऊपर कोई ऐसे होते ना वेली, या कोई कीड़ा मकोड़ा, या किसी का पक्षी का घर, या कोई रोग ऐसा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। पक्षी का अगर घर होता है उसके अंदर तो उस वृक्ष को नहीं ले सकते हैं, मतलब उस वृक्ष का भोग किसी भी वस्तु से नहीं लेना चाहिए। मतलब पंछी रहते तो पंछी उसका भोग ले रहे हैं, उसका आश्रय ले रहे हैं, या कोई कीड़ा रह रहा था उसको पेड़ को कुछ खा रहा है उसका, या कोई फल खाया हुआ है उसका, तो नहीं ले सकते उसको। जो बिल्कुल अनटच्ड है पक्षियों द्वारा, किसी जीव के द्वारा, किसी वेली के द्वारा, ऐसा वृक्ष होना चाहिए। फिर वो वृक्ष जो है वो कभी भी बिजली की तरफ से जला हुआ नहीं चाहिए, बिजली गिरी या किसी तरह से उसके टूटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, तूफान की वजह से, आंधी की वजह से या बिजली की वजह से। फिर उस पेड़ के पास वो होता है ना चींटियों का, क्या कहते हैं उसको, वारुल, वारुल बोलते हैं मराठी में उसको, हाँ एंट हिल, वो होना चाहिए। और उसके बाद में हाँ होना चाहिए उसके आसपास, जैसे हम गए थे ना उधर कोणार्क में, जहाँ भोजन किया वहाँ के बाद देखा हमने एंट हिल देखा ना, मैंने फोटो निकाला उसका, तो वो वैसे होना चाहिए। और उसके पास सांप का बिल होना चाहिए, नाग होना चाहिए। जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ उसके अंदर वो नाग का फोटो भी दिया है जो उन्होंने दर्शन किया है, कोबरा का। और उसके बुंधे पर, मेन शाखा पर, शंख चक्र पद्म और गदा के निशान होने चाहिए। मेरे पास अभी कंप्यूटर में उसका फोटो भी है, उसके ऊपर चक्र का ऐसा उठा हुआ चिन्ह है, मतलब जो ट्री बार्क है वही ऐसे ऊपर आया हुआ है और बड़ा गोल ऐसा चिन्ह है उसके ऊपर। तो जो अश्रद्धालु लोग बोलेंगे तो ट्री के गांठें होती है ट्री के बार्क के ऊपर, बहुत सारे ऐसे बात करेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। फिर उस पेड़ के आसपास एक पॉन्ड होना चाहिए, पानी का सरोवर, और 3 पहाड़ होने चाहिए उस पेड़ के आसपास। मतलब दूर दूर क्यों नहीं हो, लेकिन उसके खड़े रहेंगे आप तो 3 पहाड़ आपको दिखने चाहिए। और उसके पास में वरुण, शहद और बिल्व, यानी कि बेल के पेड़ होने चाहिए। और वो पेड़ कहीं भी दलदल में नहीं होना चाहिए, जैसा अभी मेरा रोड में दलदल है ना, वैसे नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट नो मार्शी लैंड देयर। इतने सारे लक्षण जो है वो केवल जगन्नाथ जी के पेड़ के हुए। अभी बलदेव जी का पेड़ जो है वो सफ़ेद या हल्के भूरे रंग का होना चाहिए, लाइट ब्राउन, और उसकी 7 शाखाएं होनी चाहिए उस बुद्धे से। उसके ऊपर वाले शाखा से ऐसे होता ना कोबरा नाक, शेष अनंत शेष जैसा उसका आकार होना चाहिए, इसे एक एक जो ब्रांच है वो ऐसे आनी चाहिए। और उसके ऊपर हल और गदा के चिन्ह होने चाहिए। सुभद्रा का जो पेड़ है दारू, दारू ब्रह्म कहते हैं उसको, सबके दारू कहते हैं, दारू मतलब लकड़ी, वुड। सुभद्रा का जो दारू है उसे पीला रंग होना चाहिए, सुनहरे रंग होना चाहिए, और उसकी 5 शाखाएं होनी चाहिए और उसके ऊपर कमल का चिन्ह होना चाहिए। और जो चक्र का दारू है वो लाल रंग का होना चाहिए, उसकी 3 शाखाएं होनी चाहिए और उसके ऊपर चक्र का चिन्ह होना चाहिए और बीच में थोड़ा सा गड्ढा होना चाहिए, क्योंकि चक्र का चिन्ह तो भगवान के पेड़ पर है ना, तो इनके ऊपर चक्र का चिन्ह में थोड़ा सा बीच में डिप्रेशन होना चाहिए। इस तरह से हमारे एक गुरु भाई हैं, मतलब गौर गोविंद महाराज के शिष्य हैं, उनका नाम माधवानंद दास है, कुछ भुवनेश्वर में रहते हैं। उन्होंने 96 का जो नवा कलेवरम हुआ था उसमें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड उन्होंने पार्टी को अकंपनी किया था, जितना भी संघ था ना, जितना लोगों का। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 3 लोग जाते नहीं हैं, 3 तो मेन अंदर सोते हैं, 28 लोग जाते हैं इनकी तरफ से, फिर और बहुत सारी मंडली, उनका एंटराज, उनका सपोर्टिव सब चलते हैं, जनता भी चलती है कभी कभी। जैसे अपने धोते ना आषाढ़ी कार्तिक की डंडी होती है, आपने भी 4 कदम चल लिया, 2 घंटे चल लिए, वैसे बहुत लोग उसमें चलते रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक घटना है ये, इसमें 2-4 कदम चलने के लिए बहुत लोग चलते रहते हैं, कुछ मेहमान भी रहते हैं। वैसे एक 96 का जो नवा कलेवरम था, तो माधवानंद प्रभु जी ने पूरा सफ़र किया उनके साथ, पूरा सेरेमनी उनका नोट किया हुआ है। और एक प्रभु जी हैं, इनका नाम है ध्रुव महाराज दास। जब हम सबसे पहले वृंदावन की यात्रा में गए थे 1986 में, इन्होंने उनको वृंदावन का सफ़र कराया था सबसे पहले, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन टू वृंदावन धाम। और ये किताब अगर आप पढ़ेंगे, ये दोनों फॉरेनर्स हैं, अमेरिकन है, बोला किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग कितने गहराई में पढ़ाई करते हैं। ये किताब भी थोड़ा सा मैगजीन टाइप है, तो उसमें संक्षेप में दिया है, तो ये जो किताब है इसमें इतना विस्तार में दिया, इतना विस्तार में दिया तो याद रखना में मुमकिन नहीं है। और वो लिखते हैं कि मैं यहाँ पर अधिक विस्तार में नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ऐसे बताते बीच में, इतना विस्तार में देने के बाद भी इतना डिटेल में स्टडी करते हैं। कोई भी चीज़ वो लोग जीवन में अपनाते हैं तो उसकी गहराई तक पहुँचते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द बींग फॉरेनर्स इन दिस पीपल, इवन इफ दे आर इन सेंस ग्रेटिफिकेशन दे आर वेरी डीप इन टू दैट। इंद्रिय भोग के विषय में बहुत डीप है वो, बहुत रिसर्च करते हैं उसके अंदर, और भगवान की भक्ति में आते तो भी बहुत डीप हो जाते हैं उसके। सो बींग इन डेप्थ इज देयर नेचर, बट विच डेप्थ इज डिफरेंट, विच डेप्थ दे चूज देन दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। जिस प्रकार से कुछ समय के अंदर, मतलब 2-3-4-5 हफ्ते के अंदर उनको ये पेट ढूंढना होता है, और उसके बाद वो उसको कंफर्म कर लेते हैं कि वहाँ पर सांप का बिल है कि नहीं। चिन्ह को एक्सपर्ट लोगों से, जो उनके अंदर सब एक्सपर्ट लोग रहते हैं, उनका नीलाद्री महोदय शास्त्र करके एक किताब है, और कई उनके शास्त्र हैं जो केवल जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारी के गर्भगृह के अंदर लॉक होते हैं, वो सब ताम्रपत्र और भूर्जपत्र पर लिखे हुए हैं, सब पाम लीव्स के ऊपर लिखे हुए हैं, और सब इकट्ठा करके उसको कुमकुम लगा के उनकी रोज पूजा होती है, और केवल चीफ पुजारी जो है, हेड पुजारी जो सब सीनियर मोस्ट है, वही उसको पढ़ सकता है, और बाकी के पुजारी भी नहीं पढ़ सकते उसको। वही पुजारी जो है कभी भी कुछ प्रश्न आता है तो उसको रेफर करके वो पढ़ के बाद में लोगों को समझाता है। तो ये शास्त्र जो, जैसे वेदों का सब जगह प्रचार हो गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वैसे ये ग्रंथ किसी को मिलते नहीं है, और यहाँ के जो आर्टिकल्स है, जो भी जिस प्रकार की पूजा करते हैं, वो सब रहस्य में बातें हैं। कि नवकलर की विधि जो है, जितनी पता चली हुई है इतने डिटेल में, वो भी कुछ कुछ उसका हिस्सा है, डिटेल में केवल उनको पता होता है जो चीफ पुजारी होते हैं, बाकी लोगों को खाली बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, बस पूरा ज्ञान खाली उनको होता है जिनको वो ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार होता है। तो ये जब कंफर्म कर लेते हैं सीनियर्स होते, तो फिर उसके बाद में वो जो दारू है, मतलब जो पेड़ है, उसके केवल जो बीज का बुंदा है वही उनको काम करना है, बाकी शाखाओं को काट के फेंक देना है। तो उसको सफ़ेद कपड़ा बांध देते हो, तुलसी का हार पहनाते हैं, और फिर सब गांव के लोग जो वहाँ के हैं उनको इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। लास्ट टाइम जब दो दारू का निर्माण ढूंढ के लिया था उन्होंने, तो वो गांव जो जिस गांव में गए थे, जैसे कि वो 19वीं सदी में जी रहे हैं, ऐसे लोग वहाँ पर रहते थे, एकदम सिंपल लोग गाँव के, उनको पता नहीं शहर में क्या हो रहा है, क्या टेलीविजन आया हुआ है, कुछ मालूम नहीं उनको, एकदम गाँव देहात, लाइट भी नहीं उधर, एकदम सिंपल लोग, भगवान के भक्त लोग रहते हैं वहाँ पर, ऐसे ही शांत जगह पर, जो सत्वगुणी जगह है, वहाँ पर ये पेड़ आता है भगवान की दया से और भगवान की इच्छा से। तो फिर वो सब लोग उनको नारियल अर्पण करते हैं, अलग अलग भोग बना के लेके आते हैं, ये लोग भी बनाते हैं, बाहर से भी आते हैं, कई सारे यज्ञ होते हैं। हाँ, नरसिंह भगवान का इसमें विशेष आधिपत्य है, नरसिंह भगवान के उपलक्ष में कई यज्ञ होते हैं वहाँ पर। क्या हो गया? सो जगन्नाथ जी के पेड़ के लिए, सुभद्रा जी के पेड़ के लिए, बलदेव जी के पेड़ के लिए, चक्र के पेड़ के लिए, सभी पेड़ के सामने यज्ञ होते हैं, और कई दिन तक ये उत्सव चलता है। उसके बाद में एक बहुत सुंदर उत्सव होता है, जिसमें जो विद्यापति है उनको पति महापात्र भी कहते हैं, पति महापात्र। अभी आज आप मुंबई जाएंगे कल परसों, तो आप पति महापात्रो, .com खोलेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा इसके अंदर। इनका वेबसाइट है PATIMAHAPATRA.com या तो विद्यापति.com, दोनों में से कोई खोलेंगे तो आपको पूरा ये उत्सव के बारे में अपडेट मिलेगा उसके अंदर। तो ये पति महापत्र जो है ये सोने की कुल्हाड़ी इतनी सी होती है, जो कान के कुंडल की तरह होती है सोने की, उसको लेकर एक बार पेड़ को छेद करते हैं। फिर जो दूसरे लेवल के हैं दैत्यपति विश्ववासु के वंशज, वो चांदी की इतनी सी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को छेद करते हैं। फिर जो विश्वकर्मा के वंशज है वो जाकर लोहे की कुल्हाड़ी से छेद करते हैं। सांकेतिक कार्य है। उसके बाद में फिर जो आए हैं विश्वकर्मा के जो असिस्टेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर झाड़ को तोड़ देते हैं, और जो शाखाएं हैं उसकी लंबी लंबी कभी कभी उसको रख लेते हैं, उनको वो जगन्नाथ बलदेव की भुजाओं को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर केवल लकड़ी से बना हुआ जो क्या कहते हैं उसको, चैरियट बोल सकते हैं, उसको रथ बोल सकते हैं या तो गाड़ी बोल सकते हैं, लकड़ी का ही पहिया बनता है, उसमें कोई किला नहीं होता है लोखंड का। किले भी जो है लकड़ी के बनाते हैं वही लोग बनाते हैं, और बड़ा ऐसा उनका साइज होता है फिक्स, जगन्नाथ दारू के लिए इतना साइज और सुभद्रा के लिए इतना, चक्र के लिए इतना, चार बनाते हैं गाड़ियाँ, और उसमें वो उठाकर जो वह सफ़ेद वस्त्र से बांधे हुए तुलसी और फूलों से घिरे हुए पेड़ को लेकर उनकी यात्रा आरंभ होती है वापस आने की। और वो जो यात्रा है वो बहुत सुंदर यात्रा होती है, बहुत सुंदर और मनोरम यात्रा होती है। उसमें जगह जगह लोग आते हैं, अपने घरों में पताका लगाते हैं, फूल वाला लगाते हैं, जैसे होता है उत्सव दिवाली है तो सब लोग दीपक जलाते हैं, फूल माला अर्पण करते हैं, घर में पकवान बनाते हैं, और आते आते रस्ते में जो है इनकी कई जगह रुक रुक के पूजाएँ होती है। जैसे रथ यात्रा में कैसे होता है, हमारे भक्तिविधान के सामने आता है वहाँ पूजा होती है, फिर कोने में मुड़ते हुए और एक पूजा होती है, फिर वो सेक्टर नंबर 2 की तरफ से होती है, फिर और किसी दुकान की तरफ से होती है, फिर और किसी होटल की तरफ से होती है, ऐसे पूजाएँ उनकी जगह 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 लोग उनको रुकाते हैं, भोग लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, गीत गाते रहते हैं, वेदों के मंत्र बोलते रहते हैं। इस तरह से बहुत ही उत्सवपूर्ण तरीके से, मराठी बोलते हैं वाजत गाजत, बड़े ही शान से भगवान को वो इस तक यहाँ तक लेके आते हैं। जब जगन्नाथपुरी के बॉर्डर पर आते हैं तो जगन्नाथपुरी में पहले खबर पहुँचती है कि भगवान आ रहे हैं, कि सभी यहाँ के जो पुजारी जो नहीं गए हुए हैं वो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, और जगन्नाथ जी का कुमकुम हल्दी फूल सबसे चंदन से स्वागत करते हैं उनका, उनके दारू का। और फिर राजा फिर उन वहाँ पर आता है, आते हैं राजा भी उनको स्वागत करते हैं। उसके बाद में फिर वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, दारू चार दारू जो हैं, और इनका एक भवन बनता है लकड़ी से बना हुआ निर्माण मंडप, वो जगन्नाथ मंदिर के पीछे की तरफ है, उसकी भी दिशा फिक्स है, कुछ ईस्ट की दिशा में वो बनना चाहिए, जगन्नाथ जी के मंदिर के पूर्व दिशा में। और वहाँ पर रखते हैं उनको लकड़ी के अंदर, लकड़ी को, और वहाँ पर उनकी बहुत सारी पूजाएँ होती हैं, बहुत विस्तार में वर्णन दिया है कि अनेक प्रकार की पूजाएँ होती हैं। यस हाँ, मंदिर का ध्वजा बदली हो रही है, हाँ देखिए आप दर्शन कीजिए, मंदिर का जो ध्वजा है वो बदली हो रही है। इसका भी संकल्प होता है, आप में से कोई भी व्यक्ति उसको दान दे सकता है, आपकी तरफ से ध्वजा जो है ध्वजारोहण मंदिर में हो सकता है। जैसे कोई कोई लोग आते हैं ना कि हमारी तरफ से अर्पण करते हैं, तो वो दिन में 50 बार भी बदली कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी जिनकी इच्छा है वो ध्वजारोहण में दान देकर अपने नाम की ध्वजा भगवान के मंदिर पर लगा सकते हैं। भगवान के मंदिर पर ध्वजा लगाना बहुत पुण्य की बात है। बैठ जाइए। हरे कृष्णा। तो बहुत सारे पूजा पाठ मंत्रों का उच्चार होता है, और फिर एक शुभ दिन पे उसका मंदिर मूर्ति बनाने का काम आरंभ होता है। उसमें विश्वकर्मा के जो असिस्टेंट्स हैं मतलब वंशज हैं वो फिर उस पर कार्यरत हो जाते हैं। और पद्म पुराण में ये नियम दिया गया है कि भगवान जगन्नाथ जी का शरीर दारू ब्रह्म से ही बनना चाहिए, और उनकी मूर्ति बनते समय मूर्ति बनाने को जो आवाज़ है किसी को सुनाई देना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे आप उसके लिए, कोई काटने का ठोकने का आवाज़ नहीं आना चाहिए इधर भी, किसी को नहीं आना चाहिए, केवल वो जो बनाने वाले हैं उनको आ सकता है, लेकिन बाहर के ही आए तो जगन्नाथ के पुरोहित हो या कोई भी व्यक्ति हो उनको आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, हाँ नहीं साउंड प्रूफ रूम का काम नहीं है, फिर साउंड जाएगा ना बाहर। यस वन चांस गॉन। गेस वर्क कीर्तन। यस तो बहुत सुंदर सुंदर वाद्य लगाते हैं वहाँ पर, चारों तरफ जो है अनेक मंडलियाँ बैठती हैं और बहुत घूम घूम के भगवान का कीर्तन करते हैं। तो उसकी आवाज़ ही अंदर की आवाज़ को बैरियर बना देती है, बाहर उसकी आवाज़ नहीं जाती है। और ये कंटिन्यूअस जो है 14 दिन तक ये कीर्तन चलता है, और उतने दिनों में वो चारों मूर्तियाँ जो हैं वो तैयार करते हैं। अब ये जो चारों मूर्तियाँ तैयार हो रही है, उस बीच में और एक रूप यहाँ पर बैठता है, और दारू ब्रह्म के एक लकड़ी होती है ऐसी इतनी लंबी, उसी लकड़ी के ऊपर प्रतिष्ठापना का काम आरंभ कर देते हैं। मूर्तियाँ बन रही है, अब तक वो पूरी नहीं बनी हुई है, और यहाँ पर वो और उसके मूर्ति बनाने का भी बहुत सारा नियम बना दिया उन्होंने कि जगन्नाथ जी जो है वो 84 इंच लंबे होते हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेट हैं। जो बनाने वाला कारीगर है उसके बीच की उंगली का जो 20 का हिस्सा है उसके 84 गुना जगन्नाथ जी की हाइट होनी चाहिए। उसका ये अंदर कितना लंबा है इसके ऊपर डिपेंड है वो, तो छोटे कद का आदमी को छोटा हो जाएगा, बड़े कद का हो तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये उसका मेजरमेंट है, ये अप्रॉक्सीमेट 1 इंच है। तो इसके 84 गुना जगन्नाथ जी होते हैं, 52.5 गुना सुभद्रा जी होती हैं, और कुछ इंच कम होते हैं बलदेव जी के, और 84 इंच के आधे साइज जो होती है वो जगन्नाथ जी के हाथ होते हैं, 42 इंच इतना हिस्सा, और बलदेव जी का जो हाथ दोनों हाथ होते हैं वो जगन्नाथ जी के हाथ से कम होते हैं, और उसमें से कई जो दो हिस्से होते हैं, एक जो उनके बॉडी में घुस जाता है कंधे के रूप में, और एक हिस्सा सामने आता है, तो दो हिस्से में उनके हाथ बनाते हैं, तो सुभद्रा जी के तो हाथ है ही नहीं। इस तरह से मूर्ति का निर्माण हो रहा है, तो एक इतनी लकड़ी के ऊपर कुछ पुजारी जो हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और चक्र के बैठकर प्रतिष्ठापना करते हैं, उस लकड़ी को नहलाते हैं, उसको चंदन कुमकुम अर्पण करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, यज्ञ करते हैं। उसमें 5 दिन का यज्ञ होता है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, और वो एकादशी को 1008 आहुतियाँ, एक मिनट, 10,000 आहुति अर्पण करते हैं, एकादशी को 1008 आहुति अर्पण करते हैं वासुदेव मंत्र से, द्वादशी को उतनी ही आहुतियाँ गोपाल मंत्र से अर्पण करते हैं, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल ओम रीम श्रोम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वपर सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमामि हम स्वाहा, 1008 बार, और 10,000 बार करने के लिए उनको 5 दिन लगते हैं, ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे। तो एक दिन में होता है वासुदेव मंत्र, सेकेंड डे होता है 18 शब्दों से बना हुआ गोपाल मंत्र, त्रयोदशी पे होता है भुवनेश्वरी मंत्र, और चतुर्दशी को होता है लक्ष्मी सरस्वती और शंकर भगवान कली और विमला देवी दुर्गा देवी इन सब लोगों को अर्पण करते हैं। इस तरह से आषाढ़ जो अधिक आषाढ़ है उसके अमावस्या तक ये स्थापना पूर्ण हो जाती है, फिर बड़े विधि पूर्वक इस लकड़ी के 4 टुकड़े कर देते हैं, और वो जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी और चक्र के पेट नाभि कमल के पास एक छेद बना दें। एक बड़ी रहस्य की बात है, आज तक किसी को पता नहीं चला है, यहाँ तक कि वो जो पुजारी हैं उनको भी पता नहीं है कि नाभि ब्रह्म क्या होता है, या तो नाभि ब्रह्म कहते हैं या तो उसको ब्रह्म पदार्थम कहते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा होती है, उसे जगन्नाथ जी का वो लाइफ एंड सोल है, और वो जो छेद बनाते हैं उसके अंदर ये 4 चीज़ों, 4 जो लकड़ी को अपनी स्थापना किया है उसके 4 भागों को उसके अंदर रखते हैं, और ये सब कार्य जो है अभी सब स्थापना हो गई, प्रतिष्ठापना हो गई, मूर्तियाँ वहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, फिर उनको उसी लकड़ी के मंडप में जाकर अमावस्या के रात को बीच रात 12 बजे जो सबसे हेड पुजारी है उसकी आंखें बंद की जाती है, और उसके हाथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक गहरे पट्टियों से बांध देते हैं, जैसे कि बैंडेज करते हैं हम लोग बैंडेज, जैसे कि कहीं भी आपको पता नहीं चलने चले कि आप क्या छू रहे हैं, पूरा जो है बंद कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, आँखों को गहरी पट्टी बांध देते हैं, और वो जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो लेके जगन्नाथ जी के नाभि कमल के जगह पर रख देते हैं। फिर वो जो पुराने जगन्नाथ जी हैं, मतलब जो अभी अभी प्रतिष्ठापित हैं, इनकी स्थापना हो रही है, उनकी स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है कई साल पहले, उनके नाभि कमल में वो एक जगह होती है उसको खोल लेते हैं, और उसमें से वो वस्तु निकालते हैं जिसको नाभि ब्रह्म कहते हैं। आज तक कोई पुजारी उसको वर्णन नहीं कर पाया कि वो क्या वस्तु है। जो लोग बात करते हैं या बताते हैं वो कहते हैं जैसे कि होता है ना खरगोश होता है, स्मॉल रैबिट इज देयर एंड वी होल्ड रैबिट इन हैंड लाइव मटेरियल हाउ इट विल हेल्ड सम लाइफ इज देयर इन दैट, उस प्रकार का अनुभव होता है, जीवित वस्तु का वो वस्तु वो निकालते हैं, और वो लकड़ी के साथ में जगन्नाथ जी के नाभि में बलदेव जी के नाभि में सुभद्रा की नाभि में और चक्र की नाभि में डाल देते हैं। उसके ऊपर वो लकड़ी जो उन्होंने स्थापित की है उसको लगा के उसको बंद कर देते हैं और उसमें चंदन, तुलसी और कुछ फूल रखते हैं उसके साथ में। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो इस मूर्ति से वो चीज़ निकालते हैं तो जिस प्रकार से वो रखे थे उस समय चंदन और खास करके फूल, चंदन तो वैसा ही रहेगा लेकिन जो फूल और तुलसियाँ हैं वैसे के वैसे ही फ्रेश रहती हैं और सुगंध से भरी रहती हैं। वो महाप्रसाद के रूप में निकाल लेते हैं वो लोग और नए फूल, नई तुलसी और नया चंदन वहाँ पर उसके साथ में रखते हैं। और इस तरह से ये प्रतिष्ठा अपना पूर्ण हो जाती है और फिर पुरानी मूर्तियाँ जो हैं उनको वहाँ से निकाल कर वो पीछे लेके जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कोयली वैकुंठ, यानी कि दफन भूमि, क्रेमेटोरियम। वहाँ पर ज़मीन में 4.5 मीटर के गड्ढे खोदते हैं वो और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र को उसमें डाल देते हैं और सभी लोग पुजारी जो हैं वो आते हैं और मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर और बहुत रोते हैं, जैसे कि परिवार का कोई सदस्य जो है गुजर गया हो। और 12 दिन तक उसका सूतक मानते हैं, सर मुंडवाते हैं और बहुत कम भोजन करते हैं, बहुत दुख में रहते हैं। एक आध बार कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, रात भर जगते हैं, सोते नहीं हैं। और 12 दिन के पश्चात अपने घर की सफ़ेद पुताई करते हैं, वाइट वॉश, और घर में फिर सब छिड़कते हैं गंगा जल वगैरह और अग्निहोत्र करते हैं पवित्रता के लिए और फिर नए सिरे से काम करने को बाहर निकलते हैं। इस समय तक मैंने कहा कि ये समय जो है जब से ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है, एक बात बताना भूल गया आपको मैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान यात्रा होती है तो जिस साल ये होना है उस साल जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है तो भगवान का स्नान होता है। वो भगवान का स्नान होने के पश्चात 6 हफ्ते तक मंदिर बंद रहता है तो उस साल स्नान यात्रा तक जो उत्सव होता है, जैसे कि लोग चले गए हैं मूर्तियाँ ढूंढने के लिए और वो आ रहे हैं और यहाँ पर स्नान यात्रा हो रही है, उसके पश्चात 6 हफ्ता मंदिर बंद रहता है। ये पूरा कार्यक्रम मूर्ति बनाना, ये तो नाभि ब्रह्म की प्रतिष्ठापना करना, मंत्रों उच्चार सब कुछ जो चल रहा है उसमें 6 हफ्ते बंद हो जाते हैं। और आषाढ़ की जो अधिक मास है वो उसके अमावस्या को जो नाभि ब्रह्म ट्रांसफर करते हैं और उससे दूसरे दिन फिर मंत्रोच्चारण होता है और आषाढ़ के नॉर्मल आषाढ़ के द्वितीया को रथ यात्रा होती है। इसके बीच में और एक विधि होती है, जैसे उन्होंने स्थापन कर लिया, स्थापन करने के कुछ समय पहले जगन्नाथ के ऊपर कई लेप लगाए जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि 7 प्रकार के धातु हैं, रक्त, मेद, हड्डी, चर्बी, वीर्य, 7 प्रकार के मज्जा रज्जु, जैसे कि क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, व्हाट वी से बायोप्सी, बोन मैरो, सो ब्लड, देन फ्लैश, देन फ्लैश एंड देन फैट, देन बोन मैरो, बोन एंड वीर्य, 7 धातु है हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार। तो वो सब प्राण देने के बाद में जगन्नाथ के शरीर में उसके उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के वस्त्र, कई प्रकार के जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार के औषधियाँ उनके शरीर को बांध देते हैं कपड़े से, उससे जगन्नाथ जी जो हैं पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा उनके अंदर हो जाती है। और उसके पश्चात फिर पेंटर लोग आते हैं और वो आषाढ़ अमावस्या के बाद के एक दिन पूरा जगन्नाथ को पेंट करते हैं, मतलब उनके ऊपर आँखें, शरीर के जितने भी चक्र चिन्ह हैं सब है। उसमें भी एक विशेषता है कि पेंटर लोग आते हैं वो भी एक विशिष्ट जाति के होते हैं, उनको भी वो अधिकार है पेंट करने का और वो पेंट पूरा कर देते हैं। उनके शरीर पर आप देखेंगे तो बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, आप भी छोटे मूर्ति भी लेके आएंगे ना, बहुत डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन होते हैं, रंग भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जो प्यूपिल्स हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पुतलियाँ, जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो जगन्नाथ जी के हेड पुजारी ही केवल करते हैं, वो भी गुप्तता में करते हैं। ये सब पेंट करके निकल जाते हैं फिर दरवाज़ा बंद करके उनको जो आँखों की पुतलियाँ हैं उसको जगन्नाथ जी के, बलदेव के और सुभद्रा के और चक्र के पुजारी अपने हाथों से उसको बनाते हैं। हमारे मंदिर में भी जब भगवान का विग्रह का स्थापना हुआ था तो उनकी आँखें जो है वो बंद रखते हैं और फिर वो हमारे जो गुरुजी हैं वही आकर उनको आँखों को खोलते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते करते उन आँखों का, उसको कहते हैं नेत्र उन्मीलन, और उसके पश्चात ही मूर्ति स्थापना हो गई ऐसे मानते हैं। तो इस प्रकार से आखिरी बार जो पुतलियाँ बनाते हैं उसके बाद में मंदिर का दर्शन आरंभ होता है और उस दिन आषाढ़ा एक प्रथमा, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द ब्राइट मून ऑफ आषाढ़, एक आषाढ़ मंथ, उसके शाम को नेत्र उत्सव होता है जो मैंने आपको वर्णन किया था ना, उस दिन रात को वो नारियल के पानी में वो डालते हैं कपूर और नशीला पदार्थ तैयार होता है रात भर उसको भगवान पीते हैं, नशे में बहुत चूर होते हैं, उसको कहते हैं दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद उत्सव है वो भगवान का, और उसमें से रात भर जगते हैं और नेक्स्ट डे फिर उनकी रथ यात्रा होती है, और वो रथ यात्रा को कम से कम 25 लाख लोग आते हैं। इस प्रकार से ये नव कलेवर की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। बड़ी सुंदर इसमें विस्तारपूर्वक वर्णन है, और ऐसा भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं किसी भी अवतार की ऐसी लीला नहीं होती नव कलेवरम की। हाँ, भगवान जन्म भी लेते हैं, वसुदेव के गर्भ में लेते हैं, देवकी के गर्भ में लेते हैं, कौशल्या और दशरथ के गर्भ में लेते हैं, जन्म लेते हैं, ये उनकी जन्म लीला होती है। जन्म मृत्यु चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, सब कुछ होता है। लेकिन जगन्नाथ जी कोई माता पिता नहीं है, जगन्नाथ लकड़ी से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो शरीर छोड़ते हैं, उनका दफन भूमि भी पीछे है। ऐसा सब अद्भुत कार्य है, मतलब ये हमारे लिए चिंतन हम नहीं समझ सकते उसको, हाउ टू अंडरस्टैंड इज इनकंसीवेबल, अचिंत्य वस्तु है सब। कोई प्रश्न है किसी का इसमें? यस, जगन्नाथ जी के पुजारी के परिवार अलग हैं, उनके ही बालक उसमें आते हैं, सुभद्रा जी के अलग हैं, बलदेव जी के अलग हैं, वो कहते हैं उनके सखा हैं, वो सखा सखी हैं उनके, उनकी सेवा करते हैं, और अलग अलग उत्सव के टाइम पे उनके अलग अलग सेवक होते हैं। जैसे कि जो समय है रथ यात्रा का और गुंडीचा निवास का और वापस आने का, उसमें अलग प्रकार के लोक सेवा करते हैं, और यहाँ की जो सेवा है 345 दिन की, 15 दिन छोड़कर वो कंटिन्यूसली हमारे जो नरसिंह विद्यापति है उसमें से है, वो विद्यापति पति महापात्र के वंश से है ऐसा। और कोई क्वेश्चन किसी का है? यस, ये भी बात सही है, जिस पुजारी के स्वप्न में आता है मंगला देवी का कि वो कहाँ पर है वृक्ष, वो उसी साल में उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है और वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। सबको पता है ये बात, बड़ा भाग्यवान समझ, जिसको सपना आता है उसको उसी ये पता है उसको, उसी साल में उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होनी है। यस, हाँ हाँ, ये वेरी सीनियर मोस्ट पुजारी, द हेड पुजारी। जब भी निकलते हैं वहाँ से वो, तो जो टीम बनती है 28 लोगों की, उसमें सब सीनियर लोग ही रहते हैं। सीनियर मोस्ट पर्सन इज देयर 1 पर्सन, रेस्ट ऑल आर असिस्टेंट्स, सम असिस्टेंट्स आर ऑफ विश्ववासु, द डिसेंडेंट्स, सम आर ऑफ विद्यापति एंड सम आर ऑफ विश्वकर्मा। यस यस, नो, ही हैज वट एवर दे हैव कॉन्टेक्टेड, दे हैव जस्ट, ही हैज जस्ट एक्सप्लेन टू देम कि दिस इज हाउ आई फील, बट दे ऑल्सो डोंट नो वॉट इज इट लाइक। इट इज सेड इफ एनीबडी ट्राइज टू ओपन आईज एंड सी ही विल डाई ऑन द स्पॉट, ये भी लिखा है उसके अंदर। इसलिए आज तक के इतिहास में किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया है, क्योंकि सब भगवान के भक्त है ना वो, भगवान ने उनको स्वयं आदेश दिया है इंद्रदुम्न को कि कैसे कैसे मेरी पूजा करनी है, तो उसको वो तोड़ते नहीं कभी। यस यस, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली वेयर टू अप्रोच ना, यू ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड योर चाइल्ड इज देयर, इफ यूर ब्लाइंड फोल्डेड यू नो वेर इज स्टमक इज, वेर इज हैंड्स आर, यू कैन एटलीस्ट पल्पेट एंड फाइंड आउट ना, लाइक दैट द बॉडी ऑफ जगन्नाथ दे हैव बीन टचिंग फॉर इयर्स टुगेदर, डे एंड डे नाइट दे आर टचिंग द बॉडी ऑफ जगन्नाथ, वस्त्र पहनाते हैं, इतनी उनकी ट्रेनिंग होती है, आप देखेंगे उनको वस्त्र पहनाते, अभी आँख बंद करेंगे ना तभी वो ड्रेसिंग भगवान का कर सकते हैं इतना वो। जैसे आप अभी हमारे घर में बालक है, वो आँख बंद करेंगे तो हमारी पत्नी उनको कपड़ा पहना सकती है, दिस इज अ डेली प्रैक्टिस ना, सो ओनली वन डे, आपको रोज आप देखते हैं कपड़ा पहनते वक्त उनको कि कहाँ पर वो जगह है जहाँ पर नाभि ब्रह्म में रखा हुआ है, तो वहाँ से खोल लेते हैं उसको, डाल देते हैं। यस, जहाँ पर वो दफन भूमि उनकी है वो एक फिक्स जगह है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वृंदावन जगन्नाथ जी का मंदिर जो एक शहर की तरह है अंदर, इट्स अ बिग सिटी इनसाइड, एक जगह पे किचन है उनका, एक जगह पे वो शिला गिरी हुई है, एक जगह पर दफन भूमि, एक जगह पर क्या 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 बहुत सारा चीज़ है उसके अंदर, तो वो जगह फिक्स बड़ी जगह है, वहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण है, मतलब बहुत सुंदर पेड़ लगाए गए हैं एकदम, इट्स नॉट लाइक अ कॉमन क्रेमेटोरियम लाइक पीपल डाई ओवर देयर, ऐसा नहीं है, वो बहुत सुंदर वैकुंठ भूमि है, वो कोयली वैकुंठ कहते हैं उसको, लॉर्ड्स क्रेमेटोरियम, और उसी जगह पर दूसरी मूर्ति आने के समय तक बाय नेचुरल प्रोसेस बायोडिग्रेडेशन टेक्स प्लेस, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डिग इट अगेन यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग ओवर देयर, नॉट लाइक प्लास्टिक. अगेन वी कम बैक टू प्लास्टिक स्टोरी. हाँ,
हनुमान जी इन द क्रेमेटोरियम,
देयर इज द इज देयर हनुमान जी, लॉर्ड शिवा, दे हैव बीन सर्विंग द लॉर्ड बाय ऑलवेज स्टेइंग इन क्रेमेटोरियम. उनका सेवा है, वो गार्ड करते हैं उसको. भगवान के धाम के अंदर सभी जगह पर शिव जी और हनुमान जी का निवास है, उनको रक्षा करने के लिए वहाँ पर रखा हुआ है. धाम रक्षक है लॉर्ड शिवा. यस, नो नो फीमेल अटेंडेंट्स आर देयर, ओनली मेल अटेंडेंट्स आर देयर एवरीवेयर इन ऑल प्रोसेस. कहाँ पर? सब पुरुष रहते हैं उसके अंदर. एवरीबडी इज मैन, ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ विश्ववासु दयिता, एवरीबडी इज देयर इन दैट. दिस अ लॉन्ग स्टोरी. हर क्वेश्चन इज दैट वाई ओनली मेल्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर इन स्पिरिचुअल प्रोसेसेस. संन्यास को भी आदमी को देते हैं, स्त्रियों को नहीं देते हैं. ब्राह्मण दीक्षा भी पुरुषों को देते हैं. अभी प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा देना आरंभ कर दिया, लेकिन जनेऊ नहीं पहनाते हैं, केवल पुरुषों को पहनाते हैं. इसकी लंबी कहानी ऐसी है कि इंद्र ने एक भागवत में कथा आती है, इंद्र ने एक बड़े यज्ञ में एक ब्राह्मण को बुलाया था, उसका नाम था विश्वरूप. वो ब्राह्मण बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था और उस यज्ञ में वो विश्वरूप का अपमान करते हैं. किसी डिटेल की डिटेल बात है वो. तो वो जो अपराध होता है ब्राह्मण का यज्ञ कुंड के यज्ञ स्थली पर, उसकी वजह से सृष्टि पर कई बड़े बुरे परिणाम होते हैं और उसके बुरे परिणाम सब इंद्र पे आते हैं. और इंद्र जो है जो जो उसको भोगना होता है उसकी वजह से, कई लंबी लिस्ट है, वह भागवत पढ़ेंगे उस अध्याय में आपको मालूम पड़ेगा, कई चीज़ें हैं जो इंद्र को भोगनी है अभी इसके आगे. तो इंद्र जो है अलग अलग जातियों को पकड़ता है और उनको अपने पाप बांट देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द पॉइजन इज गिवन टू द स्नेक्स. ये एक सफरिंग है ना, मतलब सांप को कोई प्रेम नहीं करता है, सांप को सब लोग मारते हैं पत्थर से और लकड़ी से. बिच्छू को कोई प्रेम नहीं करता है, कोई घर में पालता नहीं बिच्छू को. तो ये जातियों को वो सांप उन्होंने दे दिया. और समुद्र को बुदबुद दिया, मतलब फेन, दी व्हाट यू कॉल इट, हाउ डू यू से, बुदबुद इज फोम, फोम. इसलिए कहा गया है कि जो जल होता है ना, जो गैस डाल के होता है फोमी, उसको पीना अपराध माना गया है. दैट इज वाई डिवोटी शुड नॉट ड्रिंक एनी स्पार्कलिंग वाटर, क्योंकि वो जो बुदबुद के अंदर वो इंद्र का पाप जो है वो उपस्थित है. इसलिए आप कभी भी सोडा वाटर पेंटा और ये सब मत पीजिए, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ है. और ये जो ट्रीज को क्या दिया है वरदान, उनके तरफ से वो बहुत गंदगियां निकलती है पेड़ से, इसलिए उनको वरदान क्या दिया. उन्होंने क्या किया, एक एक पाप एक एक योनि को दे दिया और साथ में उनको वरदान दे दिया अपनी तरफ से. तो पेड़ को वरदान क्या दिया कि आपकी शाखा कटेगी तो आप मरेंगे नहीं, नई शाखा आएगी. आप अपनी शाखा कटेगी तो क्या होगा, वापस नहीं आती, वो जन्म भर ऐसे ही आप रहेंगे, टूटी रहेगी शरीर के अंदर. लेकिन पेड़ को आप काटते रहो, नई नई शाखा आती रहेंगी, पेड़ को दर्द भी नहीं होगा उसका. इस तरह से हर एक वस्तु को वरदान, हर एक वस्तु को उसका अपना शाप जो है वो बांट दिया. तो स्त्रियों को क्या दिया उन्होंने, द मेंसेस, इट वॉज गिवन टू देम. एंड इन रिटर्न द लेडीज वर गिवन ब्यूटिफुल कॉम्प्लेक्शन एंड वेरी सॉफ्ट स्किन एंड द अट्रैक्टिव नेचर, दैट यू नो द फीमेल द फेयर सेक्स इज वॉन्टेड बाई the opposite sex like anything. The fair sex is shy and not very extrovert, and the other sex is very extrovert and very aggressive, while the female sex is supposed to be very shy and beautiful and attractive. So that has been given to ladies. So at the price, at the benediction of attractiveness, you people have got something with you. It doesn't allow you to go somewhere in many occasions sometimes. No? In short, if you analyze all these things very carefully with intellectual understanding, that all these species of life are full of sufferings in the name of some benediction. कहीं ना कहीं हर जगह पर किसी न किसी छोटे मोटे झूठ मूठ के भूल भुलैया वाले आनंद के साथ में बहुत सारा दुख का पैकेज जो है बना के रखा हुआ है. दिस इज हाउ इट इज. एट द सेम टाइम द फीमेल्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बट दे आर वीकर सेक्स. एनीबडी कैन अटैक देम. दे आर ऑलवेज फियरफुल यू नो. दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम आइदर फादर सन और हस्बैंड. सो एवरीथिंग इज देयर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो इन द बार्गेन द मेल सेक्स इज गिवन बाय द लॉर्ड टू थिंग्स नॉलेज एंड रिनाउंसिएशन. इट इज वेरी इजी फॉर मेल मेंबर्स टू बिकम रिनाउंस्ड बट फॉर फीमेल्स टू गिव अप द चाइल्ड गिव अप फैमिली गिव अप समथिंग गो अवे इज वेरी डिफिकल्ट बाय नेचर. दे आर नॉट लाइक दे आर नॉट बाय नेचर बैड और समथिंग बट द लॉर्ड द वे ही हैज मेड द फीमेल्स आर टू गिव अप एनीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट. दे आर टू अटैच्ड एंड टू इन्वॉल्व्ड. That's why they are very loving and motherly and wifely and subservient and service oriented. They are always helping, cultivating children, giving culture to children. While the men, one fine day, agar dimag mein aaga to he can give a family and go away and take sannyas, you know. So male body is more prone to knowledge and renunciation. And females are less prone to knowledge. So that's why when the husband and wife come together, the husband gets knowledge and it imparts the knowledge to the wife. And by following the husband, automatically the wife becomes participant of 50% of the spiritual advancement of a husband. The man is capable of doing lot of tapasya. But females are having difficulty in performing tapasya. But when the wife is assisting the husband in bhakti, then the wife may not do all that bhakti activities. But automatically being the wife of the person, she derives 50% of spiritual advancement of the husband. Again, there is some difficulty and some benediction is there. That's why the purpose of life is to become the devotee of the Lord. And the father who gives birth to child, the husband who takes wife's hand in marriage, he is supposed to, as a duty, matter of fact, supposed to take his wife and children back home, back to Godhead. Otherwise, he is not supposed to get married, not supposed to produce children and do nothing. He is not supposed to do anything. And if he does get married and does not induct his wife in Krishna consciousness, does not induct his children in Krishna consciousness, then he suffers in hell for not doing those. Because he has enjoyed family life and pleasures, but not fulfilled the duties of enjoying all those activities. You can enjoy life with wife and children and money and family and house and everything. But the antidote is not to get entangled. You should become a devotee of the Lord and take everybody back to Godhead. Then your involvement and related reactions are nullified. This is science of bhakti. How to intellectually get out of the cycle of birth and death. This is what you have to learn in your life. Not simply enjoy. Whatever comes in the way, you enjoy. The human life is meant for enjoyment. It is not like that. Any other question is there? Yes? Yes. I mentioned that in the story but not in details. When Indradhumna Maharaj is coming with the procession from Avanti Desh, Ujjain, with all his kinsmen and soldiers, and Narad Muni joins him, so they come on the way and meet Bhuvaneshwar Mahadev. So he asks, he's asking Narad Muni, have you reached Neel Parvat? Have you reached Niladri? Narad Muni said, no, this is Lord Shiva. And then whatever story I told you about Shiva, Narad Muni tells Indradhumna. And then Indradhumna also gets darshan of Lord Shiva. And Shiva blesses him. And then privately Lord Shiva again appears to Narad Muni and tells him that actually speaking Neel Parvat, Lord Neel Mahadev has disappeared. Antardhan ho chuke hain. Or ये राजा बहुत दुखी होगा लेकिन उसको अभी बताना नहीं. आप बीच में एक नरसिंह भगवान की मूर्ति आपको मिलेगी जंगल में है, वो ढूंढ के निकालिए और इंद्रदन राजा से उसकी पूजा करवाइए. उसके हिसाब से बैठकर 1000 अश्वमेध यज्ञ बनाइए, यज्ञ कीजिए. और 1000वें यज्ञ की पूर्ति के समय भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे. तो जब ये जाते हैं भुवनेश्वर को पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान को स्थापन ढूंढ के निकाल जंगल से निकालते हैं, उनके लिए मंदिर बनवाते हैं विश्वकर्मा के पुत्र की सहायता से, यज्ञ की योजना बनाते हैं, सब साधुओं को झोपड़ियां बना देते हैं, उनको यज्ञ में बुलाते हैं, और फिर भगवान स्वप्न में आते हैं महाविष्णु जी। तब इंद्रदुन पूछते हैं कि स्वप्न का अर्थ क्या है, तो नारदुन बताते हैं कि ये भगवान की इच्छा है कि वो अभी अवतरित होने वाले हैं। और उसके दूसरे ही दिन गांव के लोग भाग भाग के आते हैं और बताते हैं कि समुद्र में बहुत खुशबू आ रही है, और बहुत चंदन की खुशबू आ रही है, गुरु खुशबू आ रही है, फूल की खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश समुद्र में फैला हुआ है, और एक दिव्य जो वृक्ष है वो प्रकट हो गया है। तो वो नरसिंह भगवान की मूर्ति वो है जो वहाँ पर है, ऐसा है। और कोई प्रश्न है?
डंडा प्रसाद।
हाँ,
डंडा प्रसाद,
डंडा प्रसाद। ये सब किधर गए? वो अपने निमाई पंडा है क्या इधर? वो जगन्नाथ जी का जो भी जगन्नाथ जी यूज करते हैं ना, महाप्रसाद है वो सब कुछ लगाते हैं। वो जैसे फूल भी लगाते हैं, तुलसी भी देते हैं, माला भी देते हैं, और वो जो पुष्प तिलक होता है, हाँ, वो गुणा और झुंपा होता है, वो सब देते हैं ना अपने को। उसी तरह से वो भी है। और कहीं गांव में जाएंगे तो आपको भी वो और एक पंखा मिलेगा, उसको भी ऐसे सब मारते रहते हैं। हर एक अपने अपने गांव में अलग अलग भगवान के अलग अलग कृपा देने के तरीके होते हैं। ओके, अभी मैं आपको श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताऊँगा कि कैसे प्रभुपाद जी जब वो बम्बे गए थे, जब आखिरी बार उनको प्रयत्न को यश आया और सुमति महाराज जी ने उनको हाँ कर दी कि आप जाएंगे, अभी हम टिकट दे रहे हैं आपको, तो वो तीन जगह पर गए। एक तो वृंदावन में गए कृपा याचना करने के लिए भगवान की, तो मायापुर गए, और मायापुर में जो अद्वैत आचार्य है महाविष्णु, बैठ रहा हूँ, अच्छा चालू रखो, बात नहीं रखो ऐसे, इट्स गेटिंग ओवर वेरी सून। तो फिर वो शांतिपुर गए, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का गांव है। अद्वैत आचार्य जो हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं, जो स्वप्न में आए ना इंद्रदुम्न राजा के, महाविष्णु जो लेटे हुए हैं शेष शैया पर, वो महाविष्णु के अवतार है वो, और वो सदाशिव के अवतार भी है। सदाशिव जो है वो विष्णु का वो स्वरूप है जो वैकुंठ में रहता है और जिससे शिवजी की उत्पत्ति होती है, सदाशिव कहते हैं उनको। सदाशिव और महाविष्णु दोनों के अवतार हैं, और वो भक्त बनकर आए थे, बड़े बुजुर्ग थे वो, चैतन्य महाप्रभु सीनियर थे लौकिक दृष्टि से। तो वो गंगा किनारे शालिग्राम को लेकर बैठते हैं और तुलसी दल चंदन और गंगा जल से उनकी पूजा करते हैं, और बड़े जोर जोर से पुकार कर भगवान को याचना करते हैं कि कलयुग का प्रभाव इतना बुरा हो गया है कि अभी आपके अवतार लिए बिना इस विश्व का उद्धार नहीं हो सकता है। और ऐसे कहा है कि तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई, दया करो श्री, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, कि आप ही की कृपा और आप ही के पुकारने से भगवान कृष्ण मजबूर हो गए अवतार लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उनकी कृपा लेने के लिए शांतिपुर गए, उनके पुजारी ने इंटरव्यू दिया था, उसमें वो कहा था कि ये व्यक्ति जो है ये कई बार हमारे मंदिर में आते थे शांतिपुर में, अद्वैत आचार्य के मंदिर में, और 1965 में भी आए थे, बाद में दिखाई नहीं पड़े क्योंकि वहाँ से उन्होंने कहा उस दिन जब लास्ट बार आए थे तो कई घंटे तक रोते रोते वहाँ पर प्रार्थना करते बैठे थे, और वहाँ से उठकर प्रभुपाद जी आते हैं जगन्नाथपुरी में, और यहाँ पर आके जगन्नाथ की प्रार्थना करते हैं, और यहीं से फिर लास्ट आकर मुंबई जाकर बोट में बैठकर फिर चले जाते हैं। और आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि वो तो पहले बॉस्टन हार्बर में उतरे ना न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में वो बावरी में रहे, झोपड़पट्टी में रहे, एक साल तक तड़पते रहे। उसके बाद में उन्होंने 26 सेकंड एवेन्यू में एक कमरा ले लिया भाड़े से पेट्रोल पंप के बाजू में, और फिर धीरे धीरे 1965 में इस्कॉन तक की स्थापना हुई और अनुयायी बनते गए। उसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को गए, और सैन फ्रांसिस्को में कुछ साल बीत गए थे, 1967 हो गया था उस समय, और दो साल के अंदर श्याम सुंदर देव प्रभु जी, मालती माता जी, गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी, ऐसे बड़े जो स्टॉलवर्ट डिवोटीज हैं, एकदम फर्स्ट डिवोटीज, अच्युतानंद गोस्वामी, ब्रह्मानंद गोस्वामी, गर्गमुनि, ऐसे जो बड़े बड़े इस्कॉन के फाउंडर्स हैं, प्रभुपाद के साथ वाले, वो सब भक्त बने थे और कई जगह पर वो गए थे। श्याम सुंदर और मालती इंग्लैंड गए और उन्होंने जॉर्ज हैरिसन को प्रचार किया, और जॉर्ज हैरिसन ने 17 एकड़ ज़मीन इन द हार्ट ऑफ लंदन प्रभुपाद को भेंट दिया। और आज आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट लंदन में तो करीब करीब 100 एकड़ जगह है उनकी, नहीं सॉरी 87 एकड़ जगह हो गई उनके अभी, और 70 एकड़ जगह लोगों ने वहाँ दी है। लेकिन जॉर्ज हैरिसन ने सबसे पहले उस ज़माने में सबसे प्राइम लैंड 17 एकड़ प्रभुपाद को दी, और वहाँ पर अभी भक्तिवेदांत मैनर नाम का विशाल हरे कृष्णा केंद्र खड़ा है। उनकी इच्छा है कि 108 एकड़ ज़मीन करके गायों की गौशाला बनाई जाए वहाँ पर। वो इंग्लैंड में ऐसा नियम है कि एक गाय को आपको रखना है पालने के लिए तो आपको 1 एकड़ जगह होनी चाहिए। वो लाखों गायों के कत्ल करते हैं, लेकिन गाय को अगर संभालना है तो उन्होंने नियम बना के रखा कि 1 एकड़ जगह होगी तो 1 गाय आप रख सकते हो। यू कांट कीप 2 काउज। दिस इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस, अज्ञान से भरा हुआ जीवन जो है ऐसा होता है। तो एनी वाइज 1967 में वो जो कैलिफोर्निया स्टेट में गए सैन फ्रांसिस्को में, तो वहाँ पर श्याम सुंदर जी और मालती जी वहाँ पर थे। तो एक बार मालती माता जी शॉपिंग मॉल में गई कुछ खरीदने के लिए, तो उनको बहुत सुंदर सुंदर डॉल्स दिखाई दिए। हाँ, क्या कहते हैं उसको हिंदी में डॉल्स को, गुड़िया दिखाई दी। तो उन्होंने एक गुड़िया जो है वो लेकर आई जेब में डालकर, उसको खरीदने किया, उसको उठाया जेब में डाला और लेकर आई और प्रभुपाद को दिखाया। अभी उनको पता नहीं था क्या है गुड़िया, जैसे ही वो गुड़िया के सामने, गुड़िया को प्रभुपाद के सामने रखा, तो अचानक प्रभुपाद ने अद्भुत कार्य किया, जिनको एकदम आश्चर्य हो रहा है ऐसे क्यों कर रहे प्रभुपाद जी। वो गुड़िया को प्रभुपाद ने दंडवत प्रणाम किया, सीधे फ्लैट साष्टांग दंडवत। तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुमने कहा ये गुड़िया नहीं है, ये जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी की गुड़िया थी वो, और ज़रूर वहाँ पर और 2 गुड़िया होंगी, जाओ वापस ढूंढ के लाओ उनको। तो इस बार दोबारा जाते थे, हाँ जरूर उसके बाद 2 और गुड़िया थी। तो इस बार वो 3 गुड़िया का पैसा देके दोनों तीनों गुड़िया वापस लेके आते हैं और फिर दोबारा प्रभुपाद के सामने रखते हैं। प्रभुपाद जी फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की दिव्य इच्छा से स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहाँ प्रकट हो गए। वो जगन्नाथ जी की प्रभुपाद पर की असीम कृपा थी। आप सोच सकते हैं कैलिफोर्निया कहाँ है, वेस्ट कोस्ट, यहाँ से पूरा आधा पृथ्वी खत्म होने के बाद में आता है वेस्ट कोस्ट, और वहाँ पर जगन्नाथ जी ऐसे ही प्रकट हो गए शॉपिंग सेंटर में। तो फिर श्याम सुंदर को उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, ये मूर्तियाँ जो है वो परफेक्ट मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी सी जो गुड़िया के रूप में है, कि आप मेरे लिए 8 फीट की मूर्ति बना सकते हैं इसी प्रपोर्शन में। तो श्याम सुंदर ने हाँ बोला। श्याम सुंदर तो कोई कारपेंटर नहीं थे, ना कोई स्कल्प्टर थे, मूर्तिकार थे, कुछ नहीं थे वो। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि आप बनाओ, तो उन लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लेके आए और उसी को मूर्ति को सामने रखे वो मूर्तियों को उन्होंने बनाया। तभी वो सिगरेट पीते थे श्याम सुंदर जी, और जब मूर्ति को उन्होंने बनाया तो जो हाथ बन रहे हैं उनके आधे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं, तो सिगरेट का ऐश थे वो हाथ पर रखते थे जगन्नाथ जी के। तो प्रभुपाद जी आते थे देखने के लिए। एक दिन प्रभुपाद जी ने उनको बताया, उस एस्ट्रे को उठाया, ऐसे बताया, श्याम सुंदर यू आर ओनली 1 सिगरेट अवे फ्रॉम कृष्णा, वाई आर यू कीपिंग दिस सिगरेट इन योर लाइफ, प्लीज गिव इट अप। तो श्याम सुंदर ने प्रभुपाद जी के कहने से सिगरेट छोड़ दिया। तो श्याम सुंदर जी ने अपने हाथों से जगन्नाथ जी के सबसे पहले विग्रह जो है उसकी रचना किया, और सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी ने पहले विग्रह मतलब फर्स्ट डीटीज जो इंस्टॉल किए उसी जगन्नाथ जी के थे। और सैन फ्रांसिस्को में 1967 में विश्व की सबसे पहली विदेश की रथ यात्रा आरंभ हुई, और उस दिन सारे सैन फ्रांसिस्को शहर में जो मेन स्ट्रीट था उसको गवर्नमेंट की परमिशन से बंद रखा गया फुल डे। और आज भी उसी घटना के उपलक्ष्य में हर साल वो पूरा रोड जो है बंद होता है। न्यूयॉर्क में जहाँ रथ यात्रा होती है उस दिन भी वो पूरा रोड जो है, वो रोड इतना बड़ा है कि उसके जो साइड से रोड निकलते हैं वो कम से कम आई थिंक 46 स्ट्रीट से आरंभ होता है और कुछ 87 स्ट्रीट तक चलता है वो, लाइक दिस रोड गोज लाइक दिस एंड 46, 47, 48, 49 स्ट्रीट चलते रहते हैं उसके, लास्ट में एक बड़ा पार्क है वहाँ पर वो ख़त्म होता है और पूरा रोड जो है उस दिन बंद हो जाता है। रशिया में भी ऐसा ही है, मॉस्को में पूरा रोड बंद हो जाता है जिस दिन रथ यात्रा होती है। और सबसे पहले रथ यात्रा प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में मनाई। उसके बाद इंग्लैंड में नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में जो रथ यात्रा होती है उसी में भी वैसा ही कार्यक्रम होता है। बहुत भव्य रथ यात्रा होती है, विश्व की सबसे फेमस रथ यात्रा होती है। मैक्सिमम क्राउड इज अटेंडिंग दिस फेस्टिवल, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, इंग्लैंड एंड रशिया, और अभी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ भी इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पर कम से कम एक साल में एक बार रथ यात्रा तो होती है। वैसे कहा गया है कि जहाँ से रथ यात्रा निकलती है उस रास्ते में जो कीर्तन होता है उसका परिणाम जो है जहाँ पर कीर्तन की मंडली गुजरती है चिरंतन काल के लिए, उस रास्ते से कोई भी गुजरेगा उन लोगों को उस कीर्तन के प्रभाव का लाभ मिलता रहेगा। यू मे कम ऑन 350th डे आफ्टर रथ यात्रा इज ओवर ऑन दैट रोड टू परचेज समथिंग्स, बट स्टिल द बेनिफिट ऑफ द कीर्तन टेकन प्लेस 350 डेज बिफोर इन द ओकेजन ऑफ रथ यात्रा विल बेनिफिट द पीपल हु वॉक बाय दैट रोड। क्योंकि हरिनाम जो है वो चिरंतन है, वो हरिनाम के प्रभाव से उस रास्ते का, उस एरिया का जो जीव है वो बेनिफिट पाता है उसका। तो प्रभुपाद के एक भक्त थे, उसका नाम था जयानंद। ये जयानंद जो थे वो पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे, और जब वो भक्त बने वो इतने समर्पित हो गए कि वो टैक्सी ड्राइवर का काम 12 घंटा करते थे, मंदिर में रहते थे और उस मंदिर के वो प्रेसिडेंट थे, और मंदिर का पूरा खर्चा जो है वो टैक्सी चलाकर आमदनी से मंदिर का खर्चा चलाते थे। 12 घंटे टैक्सी चलाकर जब रात को आते थे तो अपने हाथ से झाड़ू मारकर पूरा मंदिर साफ करते थे। और प्रभुपाद जी की रथ यात्रा में जो रथ यात्रा का रथ बना वो सब जयानंद ने अपने हाथों से बनाए। पहले पहले सालों में जितनी जगह रथ यात्रा हुई उसके सारे रथ जयानंद ने अपने हाथों से बनवाए, और वो रथ बनाते हुए उन्होंने कई बड़े बड़े भक्तों को भक्त बनाया। मतलब जो व्यक्ति अभी आज जयपता का स्वामी महाराज हैं, बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ड सन्यासीज हैं उनको जयानंद नाम के टैक्सी ड्राइवर ने रथ यात्रा में रथ बनाते समय उनसे सहायता लेकर, क्या सहायता लिया, एक किला पकड़ो मैं थोड़ी मारूंगा उसको, लकड़ी पकड़ो मैं काटता हूँ उसको, इस तरह से काम पे लगाया उन्होंने। और वो रथ बनाते बनाते मैंने उनको प्रचार किया और उनको भक्त बना दिया। जयपता महाराज की वैसी कहानी है कि वो जब मंदिर में गए थे तो उनको जयानंद ने कहा कम कम हेल्प मी इन मेकिंग दिस कार्ट, तो व्हाट आई कैन डू, आई एम नॉट ट्रेन, तो कोई बात नहीं, यू होल्ड अ नेल एंड आई विल हैमर इट। वो नेल पकड़ते गए, उस पर हथौड़ा मारते गए वो, और जयपता महाराज जी कहते हैं कि जो किले पर हथौड़ा मारते गए उसी साथ साथ मेरे हृदय पर भी हथौड़ा मारते गए। और वो रथ यात्रा का काम जब पूरा हुआ रथ का, तो मैंने उनसे पूछा कैन आई स्टे ओवर हियर, सेड यस प्लीज स्टे ओवर हियर। फिर जयानंद ने उनके अपने हाथ से उनका सर का मुंडन किया और वो मंदिर में उनको निवास दिया। ऐसे जयानंद जी थे। और प्रभुपाद जी कहते थे कि जयानंद जी इतने शुद्ध भक्त हैं कि जब तक पश्चिम जगत में रथ यात्रा चलती रहेगी तब तक जयानंद को लोग याद करते रहेंगे। प्रभुपाद जी का आदेश है कि जयानंद जी प्रभुपाद जी के बहुत पहले ही चल बसे, प्रभुपाद जी के होते ही उनका शरीर का देहांत हो गया। प्रभुपाद ने कहा कि जयानंद जी भगवत धाम में प्रवेश कर चुके हैं, और उन्होंने आदेश दिया कि जब भी विश्व में इस्कॉन की तरफ से रथ यात्रा होगी जयानंद प्रभु का फोटो जो है वो रथ में लगाते हैं। प्रभुपाद जी की मूर्ति रहती है, जगन्नाथ जी रहते हैं और जयानंद का फोटो रहता है। इतना प्रभुपाद जी ने जयानंद का सम्मान किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले विग्रह जो प्रभुपाद ने पश्चिम जगत में प्रकट किए वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और उसके बाद में न्यूयॉर्क में उन्होंने राधा गोविंद मूर्तियों को स्थापन किया, उसके बाद में फिर सब जगह पर राधा कृष्ण की अन्य मूर्तियाँ उन्होंने स्थापन की। इसी जगन्नाथ जी की महिमा है। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप साल के किसी भी दिन रथ यात्रा कर सकते हो क्योंकि तिथि की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बस में हो तो आप रोज भी रथ यात्रा कर सकते हो, और दुनिया में ऐसी एक ही जगह है जहाँ पर जगन्नाथ की रथ यात्रा रोज होती है, वो कौन सी जगह है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में जगन्नाथ जी, एक जगन्नाथ जी जो है वो मंदिर में बैठते हैं, वो मंदिर में रहते हैं, उधर ही अपना आनंद लेते रहते हैं, लेकिन एक जगन्नाथ जी के जो मूर्तियाँ हैं वो रथ से उतरती नहीं है, रथ में बैठती हूँ, रथ में खाना पीना खाते रहते, रथ में घूमते रहते हैं, और दिन भर रथ में रहते हैं, कुछ घंटे बाहर ग्राउंड फ्लोर पे लोगों को दर्शन देते रहते हैं, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक सभी मरीजों को मिलते हैं, ICU, NICU, वार्ड्स, OPD, जनरल वार्ड्स, सब जगह जाके सब भक्तों को दर्शन देते हैं। हमारे हॉस्पिटल के मरीज जो हैं बिस्तर में लेटे हुए, IV लगा हुआ है, ट्यूब्स लगे हुए हैं, हाथों से जगन्नाथ को फूल अर्पण करते हैं। हमारी जो गौरांगी माता जी आई हुई यहाँ पर, अतिकिली माता जी आई हुई हैं, ये सब लोग उनको असिस्ट करते हैं, उनको फूल देते हैं, उनको अर्पण करवाते हैं, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हैं। कार्तिक के महीने में रथ में बैठे हुए जगन्नाथ जी को हमारे मरीज लोग दीपक अर्पण करते हैं हर रोज, एवरी डे बाय 4 o'clock ऑनवर्ड्स टू 8 o'clock। कितना भाग्य है देखो, पड़े पड़े बीमार पड़ के भक्ति विदान में आना है, बस कुछ नहीं करना है, और जगन्नाथ जी आपके पास आएंगे दौड़ के रथ में बैठकर दर्शन देने के लिए, फूल अर्पण करने का मौका देंगे, प्रणाम करने का मौका देंगे, दंडवत करने का, हाथ जोड़ के प्रणाम करने का मौका देंगे, कार्तिक में रथ दीपदान करने का मौका देंगे, प्रसाद देंगे आपको, फिर अगले बिस्तर पर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन देंगे। इस प्रकार से जो महाराज जी हमारे अस्पताल में आते हैं बहुत सारे, वो कहते हैं दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर रथ यात्रा टेक्स प्लेस फॉर एवरी सिंगल डे ऑफ द ईयर। हरे कृष्णा, जगन्नाथ स्वामी की जय। और कोई बातें बतानी है क्या? बता दो, वो भी बता देंगे। हाँ हाँ, ऐसा है कि दिन में वो कई श्रृंगार बदलते, मैंने कहा ना कि जगन्नाथ इज अ वेरी मेटिकुलस ड्रेसर, वो दिन में केवल एक श्रृंगार नहीं करते हैं। आम मंदिरों में सुबह श्रृंगार होता है वो शाम तक वही रहता है, रात को शयन में उनका श्रृंगार बदली होकर शयन श्रृंगार करते हैं वो, लेकिन जगन्नाथ के मंदिर में दिन में कई बार उनके वस्त्र बदली होते रहते हैं। दिन में कई बार तो होते ही हैं, लेकिन मौसम और उत्सव के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहनते हैं वो। अभी उनका दामोदर वेश का श्रृंगार चलता है रोज, रात को बड़ो श्रृंगार चलता है, ऐसे अलग अलग श्रृंगार करते रहते हूँ। तो एक श्रृंगार को बदलते समय पूरा निकाल के ओनली वाइट ड्रेस इज देयर, फिर कुछ देर बाद में बंद करते हैं 5 मिनट के लिए और नया श्रृंगार बनाते हूँ। रात को 10:30 में जब गया था तो 11:30-12 के आसपास उनका बड़ो श्रृंगार वेश उतारा गया, पूरा एकदम उनको पूरा ओपन किया, कंप्लीट ओपन, और फिर वस्त्र पहनाए गए और सब जगह चंदन लगाया गया, जैसे उनकी आरती चंदन की आरती हो गई, चंदन लागे बोलते हैं उसको, इस तरह चलते रहते हैं उनका। जगन्नाथ स्वामी की जय। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।